Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
हम लोग भगवान की कृपा से स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वर्ण निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें विविध प्रकार के यज्ञ महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। शिव महिमने के 15वें श्लोक पर विचार चल रहा है, उच्चारण कर ले पहले, नहीं तो रह जाएगा कथा के प्रवाह में। असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नि सत्वां वितरसुरसाधारणमभू स्मरास्मर्तव्यात्मा नहि बसि सुपत्य परिभव। प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में पुष्पदंताचार्य जी श्लोक के तात्पर्य को बदला देते हैं। यही श्री महिमन का एक वैशिष्ट है। तेरह में श्लोक के अंतिम बताया था, न कस्यापि उन्नते शिरस्त्वय अवनति। भगवान के चरणों में सिर का झुकाना सभी के लिए उन्नति का भोग और मोक्ष प्रद है। जैसा कि अभी आप लोग पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय अखंडा जी महाराज के प्रवचन से सुन रहे थे कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीमित अहंकार है, अभिमान तो पतन का कारण है पर स्वाभिमान उत्थान का कारण है। जैसे किसी को स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं प्रेमपुरी का सत्संगी हूं, साधक हूं, मोक्षु हूं, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं ज्ञान वृद्ध हूँ, वयोवृद्ध हूँ, यदि ऐसा स्वाभिमान है तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल पड़ेगा। तो स्वाभिमान से हम अपने कर्तव्य की तरह से सावधान रहते हैं, प्रमाद नहीं होता है, और अभिमान से प्रमाद होता है। देखो दोनों में इतना ही अंतर है, अभिमान से प्रमाद, स्वाभिमान से आदमी सावधान रहता है। अभिमान है तो क्या सोचते, हमारी मर्जी कुछ भी करे, कौन बोलने वाला है, किसकी हिम्मत बोलने की, कुछ भी हम कर सकते। और स्वाभिमान है तो आप अपने आप अपने कर्तव्य कर्म में सावधान रहेंगे, दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी सो गए तो जल्दी उठ गए तो आपको पता है कि हमको 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। कोई ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान है तो जल्दी से उठ करके संध्या उपासना करेगा, भगवान सूर्य को अर्घ देगा, गायत्री महामंत्र का जाप करेगा, इसके बाद तुरंत जो है प्रेमपुरी दौड़ कर आएगा। और मान लो अभिमान है तो क्या सोचेगा, अपनी मर्जी चाहे 10 बजे उठो, 10 बजे उठना है, इसके बाद में 11 बजे कर सकता है, फोन कर देगा जरा ऑफिस संभालना, जरा देर आता। तो दोनों में इतना ही अंतर है। और हमेशा जो ईर्ष्या होती है वह दूसरे के गुण को कला को न सहने से, जैसे कि जो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व या साधकत्व मोक्षुत्व के जो सत्कर्म है, गुण है, कला है, उस पर जो अमल नहीं कर सकता, नहीं चल सकता है, वह उससे ईर्ष्या करता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, ब्राह्मण शीर्षा करेगा, देवता शीर्षा करेगा, गुरु शीर्षा करेगा, यहाँ तक कि माता पिता से भी लोग करते हैं। कहते ये सब अंध परंपरा, पुरानी परंपरा वाले हैं ये लोग, जो है ना गणेश युग के हैं, बस एक धर्रे पर बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं। अरे भाई, जब नींद आए तो सो जाओ, चाहे दो हो चाहे तीन हो, और जब नींद खुले चाहे 8 बज रहा हो चाहे 10 बज रहा हो तो उठ जाओ। ये जो है अभिमान का लक्षण है। तो 13वें श्लोक के अंतिम चरण में साफ साफ बता दिया पुष्प दंताचार्य जी ने कि भगवान के चरणों में सिर का झुकाना भोगप्रद और मोक्षप्रद है। 14वें श्लोक के अंतिम चरण में तात्पर्य बतलाया था कि भगवान का स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः। भगवान शंकर प्राणियों के भय को भंग नष्ट करने का स्वभाव है, शील है। ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसको स्वरूप कहते हैं, और उसके अंदर सामर्थ्य है यतु वायुमानि भूतानि जातानि जीवन्ति, उसका सामर्थ्य है। और उसका स्वभाव है भुवन भय भंग व्यसनिनः, आनंद स्वभाव है, सबको आनंदित करना, प्राणियों के दुख को दूर करना। जिस अविद्या से हम लोग घबराते हैं उसी अविद्या को भगवान ने अपना अलंकार बना लिया, गले में धारण कर लिया हलाहल को। इसके बाद जब जीवात्माओं के अंदर कामना हुई तो उस कामना को भंग करने के लिए ये 15वां श्लोक है। जिस कामना से आप परेशान होते हैं उसी काम की लीला 15वें श्लोक में बताया कि कामना से क्या फायदा है क्या नुकसान है दोनों का, जिसको माल की भाषा मूल्यांकन भी कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे, चाहे वह देवता हो या असुर या नर, जिसके ऊपर कामदेव के काम के बाण का जो है प्रहार होता है वह वहां पर अपना काम करके ही छोड़ता है, स्वभाव है। काम शब्द का अर्थ है इदम करिष्यामि या इदम में स्यात्, संक्षेप में कहें तो इदम में स्यात् का अर्थ है काम, यह मुझे हो जाए और यह न हो, इसी का नाम कामना है। प्रत्येक आदमी जब से पैदा हुआ और जब तक जीवित रहता है तब तक यही इच्छा करता है कि भगवान कृपा करना ऐसा हो जाए, भगवान कृपा करना वैसा हो जाए। एक विद्यार्थी था, बड़ा अच्छा दक्ष था, परीक्षा में उसने जरा कुछ गलत टिक लगा दिया, टिक लगाने का आजकल होता है ना। परीक्षा में था कि भारत की राजधानी कहाँ है और जापान की राजधानी कहाँ, बेचारा जल्दबाजी में उसने लगा दिया भारत की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी दिल्ली लगा दिया। अब जब मंदिर में आया तो याद आया कि हमने जो है जरा वो जो टिक लगाया गलत लगाया। लगा भगवान से प्रार्थना करने, भगवान आप कृपा करके रातों रात भारत की राजधानी टोक्यो बना दो, जापान की दिल्ली। उसके पिता ने सोचा कि आ इतना देर हो गई, अभी तक हाथ जोड़ करके बैठा ही है, क्या बात है, जाके बाजू में सुनने लगा तो यही जोर से बोल रहा है भगवान कृपा करो राजधानी बदल दो, नहीं तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, साल भर की परिश्रम बेकार। पिता ने कहा कि बताओ इसके लिए भगवान यदि ऐसा करे तो कितनी अब व्यवस्था हो जाएगी। यही हम लोगों की कामना होती है, बस भगवान से कहते हैं कि ऐसा हो जाए ऐसा न हो, इसी का नाम है कामना, यही है काम, इच्छा विशेष। यदि मान लो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले तो दोनों देशों में बड़ा भारी महाभारत छिड़ जाएगा, परंतु भगवान को मालूम है ये अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी प्रार्थना कर रहा है। भले ही विद्यार्थी नादान है पर भगवान नादान नहीं। तो जीवात्मा भगवान को भी अपनी इच्छा अनुसार घुमाना चाहता है क्योंकि यह अल्पज्ञ है। तो यह जब हमारे जीवन में कामना आती है तो कामना इदम में स्यात को लेकर के जब आती है तो मनुष्य उसी के पूरा करने में लगा रहता है। ये कामना तो पूरी नहीं होती पर हम लोग पूरे हो जाते हैं। आज तक कभी भी किसी की भी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है। शास्त्रकार कहते हैं साक्षात जिसके ब्रह्म लाडले हैं, भगवान राम साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात निर्शेष चैतन्य के ही अवतार आनंद के अवतार है, उस माँ बाप की भी कामना पूरी नहीं हुई। दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो उनकी कामना थी हा राम मैं आपको सिंहासन पर बैठे नहीं देख सका। तो देखो वो ब्रह्म जिसका बाप है ऐसे दशरथ महाराज उनकी भी कामना कहाँ परिपूर्ण हुई। ये कामना का स्वभाव है जो कभी न परिपूर्ण हो उसी की नाम कामना है। पर हम लोग अपने कामना को परिपूर्ण करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देवताओं की कामना है कि तारकासुर का वध हो। तारकासुर की वध के लिए कामदेव को प्रेरित किया कि निष्काम भगवान शंकर के ऊपर तुम अपना काम बाण का प्रहार करो। पहले तो मना कर दिया परंतु जब देवताओं ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो उनकी प्रशंसा में तारीफ जो है ना एक मीठी जहर है। उनकी प्रशंसा में बेचारा बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया वैसे ही बेचारा भस्मभूत हो गया। भगवान के ज्ञान अग्नि से उसका नाश हो गया। इधर देवताओं की कामना अधूरी रह गई। देवताओं ने तो सोचा था कि जैसे कि अन्य देवताओं को मनुष्यों को असुरों को कि कामदेव अपने काम से व्यथित कर देता है वैसे ही देवाधिदेव महादेव को भी यह जो है चलायमान कर देगा। परंतु विपरीत परिणाम निकला। सारे देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महादेव जरा ठहरो ठहरो कि जब तक बोलते तब तक तो भस्म हो गया। देवताओं ने कहा कि हम लोग तारकासुर से पीड़ित हैं, इसलिए हम लोगों ने इससे प्रेरित किया है, इसलिए इसका कोई अपराध नहीं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, अभी कामदेव अनंग हो करके, अनंग मतलब कि बिना शरीर के अशरीरी हो करके ये सारा काम करेगा। फिर भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया है, पार्वती से ब्याह करके और देवताओं के संकट को मिटाया है। यह तो पौराणिक कथानक है परंतु हमारे जीवन में भी जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो उसको निवृत्त करने के लिए दुनिया वाले यही सलाह देते हैं। भगवान शंकराचार्य देवा शब्द का व्याख्यान कई जगह किए हैं। द्योतनात देवा इंद्रियाणि, ये हमारी इंद्रियां विषय को प्रकाशित करने से आंख रूप को प्रकाशित करती है, कान शब्द को, ये इंद्रियां हमारी ये देवा हैं। इंद्रियां जब व्यथित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो ये इंद्रियां जो है फिर जो है उस कामना के अनुसार प्रवृत्त होती है। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भाई देखो अब तुम ब्याह कर लो, बहुत तुमने पढ़ लिया लिख लिया साक्षर हो गए, पैसा कमा लिया, नौकरी भी लग गई, बिना ब्याह के जो है ना तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं हुआ। तारकासुर का बदनी होगा। अब बेचारा ब्याह कर लिया, इसके बाद और नई समस्या जुड़ गई, बच्चे हो गए, इसके बाद और नई समस्या। समस्याओं का समाधान केवल भगवान के चरणों में है। जब भगवान के चरण का हम लोग आश्रय लेते हैं तो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं बसीसु पथ्य परिभव। इस श्लोक का सार बतला दिया, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनका परिभव, परिभव बोलते तिरस्कार, अनादर। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा करिफल ऐसे, जरई नाथ जरई नगर अनाथ कर जैसे। संत की अवज्ञा करने से नगर अनाथ के समान जो लंका था वह जलने लगा। इसी बात यहाँ लिखा कि महापुरुषों का जिनकी इंद्रियां मन वश में है, जो हमेशा भगवान के भजन में लगे हैं, ऐसे का जो परिभव तिरस्कार है, वो नहीं पथ्य किसी के भी कल्याण को करने वाला नहीं होता है, बड़ा ही अमंगलकारी होता है। पूज्य पूजा व्यतिकरणे मरण त्रासो दुर्भिक्षु जायते। पूज्य के पूजा का व्यतिकर मतलब तिरस्कार करने से, छोड़ने से, मरण या जो है भूकंप जैसी समस्या खड़ी होती है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, उस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार काशी के कुछ पंडित कश्मीर यात्रा के लिए चले। कश्मीर पहुंचने के बाद वहां का राजा बड़ा स्वागत किया। राजा ने पूछा कि आप हमारे यहाँ किस कामना से, इच्छा से आए हैं? पंडितों ने कहा कि हम कश्मीर के तीर्थों का दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने सारी व्यवस्था कर दिया। काशी के पंडित अच्छी प्रकार से कश्मीर के तीर्थाटन को कर लिए, पधारे। राजा ने पूछा है कोई तकलीफ तो नहीं हुई? काशी के विद्वानों ने कहा कि यात्रा तो हमने सब पूरी कर ली, परंतु हमने सुना है कि आपके देश में बड़े भारी एक पंडित हैं, जिनका नाम कैयट है। कैयट बहुत मशहूर है, व्याकरण दर्शन पर इनका बड़ा अच्छा व्याख्यान है, तो हम कैयट का दर्शन करना चाहते हैं। काशी ने कहा कि हमें तो पता नहीं कोई कैयट यहाँ पर है। काशी के पंडितों ने कहा कि हम लोग उनके ग्रंथ को भी पढ़े हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं। राजा ने कहा कि आप ठहरिए, मैं पता लगा करके आपको बताऊंगा। पंडितों की व्यवस्था कर दिया, मंत्री को भेजा कि पता लगाओ कैयट कहाँ रहते हैं। कई दिन ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि एक नदी के किनारे अपना झोपड़ी बना करके और कैयट पठन पाठन में लगे हुए हैं। राजा पंडितों की व्यवस्था कर दिया। पंडित कैयट के पास जाते हैं, जाकर के उनसे अच्छी वार्तालाप होती है। वार्तालाप में सारे शंका का समाधान करते हैं। काशी के पंडित बहुत खुश हुए, एक तो हमारी यात्रा पूरी हुई, दूसरी शंकाओं का समाधान हो गया, जितनी शंकाएं थी। चलते समय उन्हें बड़ा दुख हुआ कि जिस देश में इतना बड़ा भारी पंडित हो, विद्वान हो, उसके न रहने की ठीक से व्यवस्था है, न खाने की, न कोई मकान है, झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जैसे तैसे कुल्थी के अनाज को बना के खाता है। उनके मन में संशय हुआ कि लगता है कि राजा यहाँ का विद्वत प्रिय नहीं है। राजा के पास काशी के पंडित आए। राजा ने पूछा कि आपने उनका दर्शन किया? तो पंडितों ने कहा दर्शन भी किया, शंका समाधान भी हुआ, परंतु राजन अब आपका यह राज्य बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता है। राजा ने कहा ऐसी क्या कमी आपको दिखाई पड़ी? काशी के पंडितों ने कहा कि जिस राज्य में विद्वान का संत का तिरस्कार हो वह राज लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता, क्योंकि तो आपके राज में इतने बड़े भारी पंडित हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी व्यवस्था भी ठीक से नहीं, ये बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं है। राजा ने कहा कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए, तत्काल मैं उनकी सारी व्यवस्था कर देता हूं। राजा अपने मंत्री को वहां भेजता है, मंत्री जाकर कैयट के पास निवेदन करते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप जो है बताइए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। कैयट ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, मैं अपरिग्रही ब्राह्मण हूं, मैं परिग्रह नहीं करता, क्योंकि तो ब्राह्मण को परिग्रह करना निषेध है, जरूरत से ज्यादा चीज ब्राह्मण को नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मंत्री वापस आ गए, राजा ने सोचा कि मुझे खुद चलना चाहिए। राजा खुद जो है दूसरे दिन कैयट के पास जाते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं और राजा ने कहा कि आपको कोई अनुपत्ति हो तो आप मुझे बतलाइए। कैयट ने कहा मुझे तो कुछ भी अनुपत्ति नहीं, क्योंकि मैंने बड़ा सोच विचार करके ग्रंथों का व्याख्यान लिखा है, मुझे तो कोई अनुपत्ति है नहीं। हाँ तुझे कोई अनुपत्ति है तो तू बता, मैं समाधान करूंगा। राजा ने कहा कि मैं तो कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं, अनुपत्ति का तात्पर्य है कि जो आपके पास चीज न हो, कमी हो, उसको आप बतलाइए। अनुपत्ति शब्द का दो अर्थ होता है, एक तो यह अर्थ है कि आपने किसी चीज को लिखा हो, समझा हो, पढ़ा हो, पर उसमें जो है कोई तर्क न मिले, युक्ति न मिले, तो उसको अनुपत्ति कहते हैं। कि हमने तो यह कह दिया कि भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप है, ये संसार केवल व्यवहारिक है, आत्मा ही अपरिवर्तनीय है, परंतु इसमें कोई तर्क न हो तो कहते हैं कि इसकी अनुपत्ति है, उपपत्ति नहीं। तो अनुपत्ति का अर्थ होता है कि सोची समझी लिखी पढ़ी बात के लिए तर्क का न मिलना, इसमें कोई तर्क न हो। और दूसरा अनुपत्ति का अर्थ है कि अभाव, हमारे पास जो चीज होना चाहिए वो चीज न हो, जैसे कि हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, हुआ न हो, जरूरतमंद चीजों के अभाव को भी अनुपत्ति कहते हैं। तो यार राजा ने कहा कि हमारा भाव है कि आपके पास यदि कुछ न हो, जरूरत की चीज है, तो आप बताइए, हम उसकी पूरी कर देंगे। कैयट ने पत्नी को बुलाया और कहा कि देखो अनाज कितना है। धर्म पत्नी ने कहा कि आदि घड़ा भी अनाज भरा हुआ है। कैयट ने कहा कि बस आपकी इच्छा है तो आप इसको भर दो, इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा ने कहा महाराज आपने मांगा भी तो क्या मांगा, राजा से हो भी, इस घड़े को आप केवल भर दो, आपको चाहिए तो मैं मकान बना देता हूँ, आने जाने के लिए सुंदर जो है रथ रख देता हूँ, सुंदर कपड़े देता हूँ, चार पांच दास दासियां रख देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, विद्वान हूँ, यदि मैं अच्छे मकान में रहूंगा, अच्छा कपड़ा पहनूंगा, तो उसको संभालना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, हमारा समय उधर जाएगा, तो अपना अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इतना ही पर्याप्त है। राजा ने कहा कि काशी के पंडित आए थे और उन्होंने कहा कि आपका राज्य बहुत दिन नहीं ठहरेगा, क्योंकि आपके राज्य में कई जैसे विद्वान अब व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं, इसलिए मैं आपको व्यवस्थित करने के लिए आया हूं। कैयट ने पत्नी को बुलाया, कहा कि देखो हमारे रहने से यदि इसके राज्य का नुकसान होता हो तो अपने को चलना चाहिए, चटाई उठाया, घड़ा लिया, चलने को उद्यत हुए। राजा हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगा कि कि हमारे कहने का भाव यह नहीं है कि आपके रहने से हमारे राज्य का नुकसान होगा, बल्कि भाव यह है कि जिस राज्य में विद्वान ब्राह्मण संत का निरादर हो वह राज्य अधिक दिन तक चल नहीं सकता है। इसलिए आप कुछ स्वीकार कर लीजिए। राजा की बात को मान करके उन्होंने कुछ उसके भेंट को स्वीकार कर लिया। तो देखिए, जब तक यह मुझे ब्राह्मणत्व का अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूं, तब तो परिग्रह नहीं करेगा। और यदि ब्राह्मणत्व का स्वाभिमान नहीं है तो चाहे जितना भी दे दो, इदम में स्यात, इसकी कोई पूरी नहीं होनी है, चाहे कितना भी उसको दे दिया जाए। और जीवन में ब्राह्मणत्व का, साधुत्व का स्वाभिमान है। क्षत्रिय के पास, वैश्य के पास ज्यादा धन हो तो नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ काम करना होता है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, दूसरे का सहयोग करना है। परंतु जो साधु ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य है पठन, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, ये जो छह उनके एक कर्तव्य बदलाए हैं, पहला है पढ़ना पढ़ाना, दूसरा यज्ञ करना यज्ञ कराना, और दान लेना दान देना, ये छह मुख्य इनके कर्तव्य हैं। तो ब्राह्मणत्व का, साधुत्व का स्वाभिमान है तब तो वह परिग्रह नहीं करेगा, और स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है, तो भी चाहे जितना भी मिल जाए वह भी कम है। इसलिए यहाँ पर इस 15वें श्लोक के अंतिम चरण से तात्पर्य बदलाया कि बसेषु परिभव नहीं पथ्य, जिसकी इंद्रियां बस में है, मन बस में है, उसका तिरस्कार, अनादर राष्ट्र के विप्लव का कारण बन जाता है। और यह तो कामदेव साक्षात भगवान शंकर का ही परिभव किया था तिरस्कार, इसलिए काम का नाश हुआ। तो हमारे जीवन में जब अविद्या हो और अविद्या को मिटाना हो, तो जैसे कि चाहे देवता हो या असुर,